नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विश्व शांति के लिए दुनिया भारत की ओर देख रही है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 2550वें भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन किया। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार तेज, बुधवार को प्रचार अभियान समाप्त होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का जेआरएफ और पीएचडी में प्रवेश के लिए यूजीसी नेट परीक्षा का पंजीकरण शुरू। अमरीका की प्रतिनिधि सभा ने यूक्रेन, इसराइल और ताइवान के लिए सुरक्षा सहायता पैकेज के अंतर्गत 95 अरब डॉलर की स्वीकृति दी। और आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से और पंजाब किंग्स का सामना गुजरात टाइटंस से। दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व की प्राचीनतम जीवंत सभ्यता तो है ही, ये मानवता की आश्रय स्थली भी है। उन्होंने कहा कि भारतीय चिंतन केवल अपने लिए नहीं बल्कि सर्वजन हिताय होता है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत पूरे आत्मविश्वास के साथ दुनिया भर में सत्य और अहिंसा को बढ़ावा दे रहा है।
आज भारत इस भूमिका में आया है क्योंकि आज हम सत्य और अहिंसा जैसे व्रतों को वैश्विक मंचों पर पूरे आत्मविश्वास से रखते हैं। हम दुनिया को ये बताते हैं कि वैश्विक संकटों और संघर्षों का समाधान भारत की प्राचीन संस्कृति में है, भारत की प्राचीन परंपरा में है। इसलिए आज विरोधों में भी बटे विश्व के लिए भारत विश्व बंधु के रूप में अपनी जगह बना रहा है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि एक ऐसे समय में जब दुनिया के कई देश संघर्षरत और युद्धरत हैं, भारत के तीर्थंकरों की शिक्षाएं और अधिक महत्वपूर्ण हो गई हैं। उन्होंने कहा कि आज दुनिया विश्व शांति के लिए भारत की ओर देख रही है।
वैश्विक संघर्षों के बीच देश युद्धरत हो रहे हैं, ऐसे में हमारे तीर्थंकरों की शिक्षाएं और भी महत्वपूर्ण हो गई है। उन्होंने मानवता को वाद विवाद से बचाने के लिए अनेकांतवाद और शातवाद जैसे दर्शन दिए। अनेकांतवाद यानी एक विषय के अनेक पहलुओं को समझना, दूसरों के दृष्टिकोण को भी देखने और स्वीकारने की उदारता वाला आस्था की ऐसी मुक्त व्याख्या, यही तो भारत की विशेषता है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि नए भारत की इस नई भूमिका का श्रेय हमारी बढ़ती क्षमताओं और विदेश नीति को जाता है। उन्होंने कहा कि भगवान महावीर के प्रति युवा पीढ़ी के समर्पण और आकर्षण से ये विश्वास पैदा होता है कि देश सही दिशा में बढ़ रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय संस्कृति मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि भगवान महावीर का दर्शन आज भी प्रासंगिक है। उन्होंने कहा कि जियो और जीने दो का सिद्धांत आज भी महत्वपूर्ण और सामयिक है।
भगवान महावीर के सिद्धांत आज भी प्रासंगिक है। जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव का सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण भी है और प्रासंगिक भी है। अनेकांतवाद, स्यादवाद, ये हमारे जैन दर्शन के जो दो पिलर हैं, और विश्व जब तनाव की ओर बढ़ता है तो ये दो सिद्धांत तनाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार अभियान तेजी पर है। इस चरण में 13 राज्यों की 88 सीटों पर 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। आईएनडीआई गठबंधन और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सहित सभी राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता देशभर में रैलियां कर रहे हैं। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने कल कर्नाटक के बेंगलुरू और चिकबल्लापुर तथा महाराष्ट्र के परभणी और नांदेड़ में चुनावी रैलियों को संबोधित किया। उन्होंने 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए 24 घंटे कार्य करने की वचनबद्धता दोहराई। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने केरल के इरियाड में एक जनसभा को संबोधित किया। अमरोहा की एक रैली में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि अगर आईएनडीआई गठबंधन की सरकार बनती है तो किसानों के ऋण माफ कर दिए जाएंगे। बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और महागठबंधन के वरिष्ठ नेता अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में सभाएं कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज दोपहर बाद बिहार में एक जनसभा करेंगे। जनता दल यूनाइटेड प्रमुख मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूर्णिया में पोटाही से फलका बाजार तक रोड शो करेंगे। कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और विकासशील इंसान पार्टी के नेता भी महागठबंधन के प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाएं कर रहे हैं। राज्य में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को 5 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा। इनमें किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, बांका और भागलपुर शामिल हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज राज्य में भारतीय जनता पार्टी के प्रचार अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। मुख्यमंत्री रीवा, सागर और छतरपुर में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा खजुराहो लोकसभा के चांदला और राजनगर में और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा में सभाओं को संबोधित करेंगे। राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल बंडा, देवरी और उदयपुरा क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेंगे। लोकसभा चुनाव के बारे में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक नई दिल्ली में जारी है। बैठक में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। पंजाब से पार्टी के वरिष्ठ नेता भी इस बैठक में भाग ले रहे हैं। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए कल तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। इस चरण के लिए नामांकन पत्रों की जांच कल की गई। इस चरण में 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 94 संसदीय सीटों के लिए 7 मई को मतदान होगा। मध्य प्रदेश में तीसरे चरण के लोकसभा चुनाव के लिए कल पर्चों की जांच में 140 उम्मीदवारों के नामांकन वैध पाए गए और 13 उम्मीदवारों के पर्चे खारिज कर दिए गए। इस बीच चौथे चरण के चुनाव के लिए कल 6 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया। चौथे चरण के लिए अब तक 17 उम्मीदवार 25 नामांकन दाखिल कर चुके हैं। वहीं समाजवादी पार्टी को महाराष्ट्र में गहरा झटका लगा है। भिवंडी पूर्व से पार्टी विधायक रियाज शेख ने त्यागपत्र दे दिया है। उन्होंने कहा है कि वे पिछले वर्ष से लगातार कुछ मुद्दों पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन प्रयासों के बावजूद इन मुद्दों का समाधान नहीं किया गया। लोकसभा चुनावों के दौरान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों की प्रोफाइल श्रृंखला में आज हम महाराष्ट्र के नांदेड़ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र पर रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं।
कांग्रेस ने पूर्व विधायक वसंतराव चव्हाण को मैदान में उतारा है, जबकि वंचित बहुजन आघाड़ी ने छात्र आंदोलन के युवा उम्मीदवार अविनाश भोसीकर को जिम्मेदारी सौंपी है। बीजेपी ने मौजूदा सांसद प्रताप पाटिल चिखलीकर पर अपना भरोसा जताया है। नांदेड़ संसदीय क्षेत्र से 23 उम्मीदवार अपनी चुनावी किस्मत आजमा रहे हैं। पिछले 5 चुनाव में से 4 बार कांग्रेस ने जीत हासिल की है, जबकि पिछले चुनाव में बीजेपी ने इस सीट पर जीत हासिल की थी। निर्वाचन क्षेत्र में कुल 18,51,843 मतदाता है, जबकि 2,062 मतदान केंद्र तैयार किए गए हैं। इनमें से 39 संवेदनशील मतदान केंद्र है। नांदेड़ लोकसभा के लिए दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होना है। समरजीत ठाकुर, आकाशवाणी समाचार, छत्रपति संभाजीनगर।
भारत जैसे विविध संस्कृति वाले लोकतंत्र में नोटा विकल्प या नागरिकों के असंतोष को व्यक्त करने और बेहतर प्रशासन की मांग करने के अधिकारों का प्रतीक है। ये चुनावी प्रक्रिया में लोकतंत्र और जवाबदेही के सिद्धांतों को सुदृढ़ करता है। एक रिपोर्ट।
भारत की चुनाव व्यवस्था में नोटा यानी इनमें से कोई उम्मीदवार योग्य नहीं, एक महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक अधिकार। ये मतदाताओं को प्रत्याशी सूची में किसी भी उम्मीदवार की योग्य न पाए जाने पर नोटा विकल्प चुनते हुए अपनी असहमति दर्ज करने का अधिकार देता है। वर्ष 2013 में सुप्रीम कोर्ट में दायर एक जनहित याचिका में मतदाताओं द्वारा किसी भी उम्मीदवार की योग्य नहीं होने पर उन्हें अपनी असहमति दर्ज करने का अधिकार मांगा गया था। इसके अलावा कई अन्य विकल्पों की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका पर विचार करते हुए और इसे मतदाताओं को अस्वीकृति व्यक्त करने के लिए एक बेहतर तंत्र प्रदान करने के महत्व को पहचानते हुए नोटा विकल्प शुरू करने के पक्ष में अपना फैसला सुनाया। नोटा ने अपनी शुरुआत के बाद से ही भारतीय चुनावों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये न केवल जनता की भावनाओं और अयोग्य उम्मीदवारों के प्रति असंतोष को दर्शाता है, बल्कि राजनीतिक दलों को ईमानदार, जवाबदेह और योग्य प्रतिनिधियों को चुनाव मैदान में उतारने के लिए प्रोत्साहित करता है। रईस रिहान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की सरकार ही भारत को 5वीं से 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना सकती है। आज महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले के संग्रामपुर में एक जनसभा में उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अनुच्छेद 370 और 3 तलाक की व्यवस्था को समाप्त करने का साहस दिखाया है और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने पर 2047 तक देश को विकसित बना सकती है। पार्टी प्रत्याशी प्रताप राव यादव के पक्ष में प्रचार करते हुए उन्होंने कहा कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए सरकार में भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार का बोलबाला था। श्री नड्डा ने कहा कि भाजपा सरकार जवाबदेही, रिपोर्ट कार्ड और विकास की राजनीति करती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं।
लोक निर्णय 2024
आम चुनावों पर विशेष कार्यक्रम
हर शाम 7 बजे से और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड पर।
चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर,
विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण,
दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए
लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024।
दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की इस वर्ष 16 जून की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए की वेबसाइट पर पंजीकरण प्रारंभ हो गया है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह ने बताया कि पंजीकरण 10 मई तक किया जा सकेगा और शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख 12 मई है।
यूजीसी नेट के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है और ये 10 मई तक चलेगा और इस बार जो इसमें ऐड किया गया है नेट के एग्जाम से पीएचडी में भी एडमिशन मिल सकता है और ग्रेजुएशन के बाद भी कुछ कोर्सेस इस तरीके से हैं कि उसमें भी डायरेक्टली लोग नेट में अप्लाई कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में डिटेल दिया हुआ है और परीक्षा इस बार सभी पेपर्स की एक ही दिन 16 जून को होगी, वो पेन पेपर बोर्ड में होगी। ये एक पिछली बार से चेंज है।
छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में आज सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक माओवादी मारा गया। जिले के भैरमगढ़ इलाके में माओवादियों की मौजूदगी की खुफिया सूचना मिलने पर जिला रिजर्व गार्ड की टीम ने तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान आज सुबह केशकुतुल के जंगलों में पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के बाद मौके से हथियार, विस्फोटक और अन्य संबंधित सामग्री बरामद की गई है। अमरीकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने यूक्रेन, इसराइल और ताइवान को सुरक्षा सहायता प्रदान करने के लिए 95 अरब डॉलर के पैकेज को मंजूरी दे दी है। इसमें गजा के लिए 9 अरब डॉलर से अधिक की मानवीय सहायता और ताइवान सहित हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए 8 अरब 12 करोड़ रुपए डॉलर की सहायता शामिल है। एक रिपोर्ट।
यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने निचले सदन में प्रस्ताव पास होने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि जब तक अमेरिका लोकतंत्र और स्वतंत्रता को संरक्षण देगा तब तक ये मूल्य वैश्विक स्तर पर सदैव बने रहेंगे। उधर रूस में राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता ने कहा कि इस पैकेज से अमेरिका तो धन जुटाएगा लेकिन यूक्रेन को इसका खामियाजा भुगतना होगा और वहां और अधिक लोग मारे जाएंगे। अमेरिकी संसद के ऊपरी सदन सीनेट में इस विधेयक पर अगले सप्ताह चर्चा होने की संभावना है। समाचार कक्ष से जसपाल कौर।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। खेलों में आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। ये मैच कोलकाता में दोपहर बाद 3:30 बजे से खेला जाएगा। आज ही एक अन्य मुकाबले में पंजाब किंग्स और गुजरात टाइटंस की टीम आमने सामने होगी। ये मैच चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से होगा। प्रतियोगिता में कल सनराइजर्स हैदराबाद ने डेल्ही कैपिटल्स को 67 रन से हरा दिया। दक्षिण कोरिया में विश्व एशिया ओशियानिया ओलंपिक और पैरालंपिक क्वालिफिकेशन मुकाबले में नौकायन में बलराज पनवार ने तीसरा स्थान प्राप्त कर पेरिस ओलंपिक के लिए भारत का पहला कोटा हासिल कर लिया है। बलराज पनवार भारतीय सेना के कर्मी हैं। उन्होंने 2000 मीटर की रेस 7:01.27 सेकंड में पूरी की। मौसम विभाग ने अनुमान व्यक्त किया है कि पश्चिम बंगाल के गांगई क्षेत्रों में आज लू जारी रहेगी और झारखंड और बिहार के अलग अलग हिस्सों में इस महीने की 24 तारीख तक भीषण गर्मी की स्थिति बनी रहेगी। बुधवार तक तटीय आंध्र प्रदेश, यनम, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल और माही में गर्म और आर्द्र मौसम बना रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा विश्व शांति के लिए दुनिया भारत की ओर देख रही है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 2550वें भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन किया। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार तेज, बुधवार को प्रचार अभियान समाप्त होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का जीआरएफ और पीएचडी में प्रवेश के लिए यूजीसी नेट परीक्षा का पंजीकरण शुरू। अमेरिका की प्रतिनिधि सभा ने यूक्रेन, इसराइल और ताइवान के लिए सुरक्षा सहायता पैकेज के अंतर्गत 95 अरब डॉलर की स्वीकृति दी। और आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से और पंजाब किंग्स का सामना गुजरात टाइटन्स से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।